कटेगा पल हर पल हर पल।
बिलासपुर के ज्येष्ठ नागरिक संघ पर आधारित कार्यक्रम सुनिए वट वृक्ष।
ओ हम सफर लगता है डर, रात कटे ना कभी हो सहर।
इस पल में सिमटे उमर,
रात कटे ना कभी हो सहर।
एक ख्याल की तरह होते हैं जब पल पल में बिखर जाते हैं, अपने दिल की दुआओं से संभाला करते हैं हमें हमारे बुजुर्ग। जब अंतर मन से होते हम खाली, फिर भी कोई हमारी राह नहीं। हमारा जुनून, हमारी ख्वाहिश ताकत बन जाते हैं हमारे बुजुर्ग।
तू जो है साथ मेरे तो डगर लगे के जैसे खूबसूरत घर।
तू जो है साथ तो ये अंबर लगे के जैसे साया हो सर पर। तेरे कांधे पर रख कर सर यूं ही कट जाए सारी उम्र।
उम्र का बढ़ना एक ऐसा सत्य है जिसे रोका नहीं जा सकता। हर इंसान अपनी पैदाइश के बाद जिस भी उम्र के पड़ाव से गुजरता जाता है, उस काल को एंजॉय करने के साथ साथ उस उम्र पड़ाव की तकलीफों से होने वाली मानसिक यातनाओं को महसूस करता चलता है। और जैसे जैसे वो उम्र दराज होता जाता है, उसको अपनी पुरानी परेशानियां हल्की नजर आने लगती हैं। लेकिन रिटायरमेंट की उम्र, बुजुर्गियत की उम्र, जब वो अपने नीचे दो और पीढ़ियों को विकसित होते देख रहा होता है और कई मामलों में अपने को असहाय सा महसूस करने लगता है, शायद सबसे कठिन दौर होता है पूरे जीवन का। उनकी परेशानियों को नीचे की दो पीढ़ियां कई बार समझ भी नहीं पाती हैं। बीमारियों का जमावड़ा, परहेज और बंदिशों में जीना, छोटी छोटी बातें भूल जाना, समय न कटना, आर्थिक मानसिक परेशानियां, बहुत कुछ होता है जो न वे व्यक्त कर पाते हैं और न उनसे छोटे उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं। अजरपा रेडियो ने ज्येष्ठ नागरिक संघ बिलासपुर के दो लोगों से विस्तार से बातें की, उनको समझने की कोशिश की और बातों को आगे पहुंचाने के लिए वो बातचीत हम अब आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहले अपने परिचय और ज्येष्ठ नागरिक संघ के बारे में जानकारी दे रहे हैं 1942 की पैदाइश श्रीमान चंद्र प्रकाश देवरस जी।
मैं चंद्र प्रकाश देवरस, ज्येष्ठ नागरिक संघ बिलासपुर का भूतपूर्व सचिव एवं उपाध्यक्ष रहा हूँ। ज्येष्ठ नागरिक संघ बिलासपुर की स्थापना 23 मार्च 1992 को बिलासपुर के श्री राम मंदिर के सभागार में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट जज श्री गंगाधर काळे और उसके सचिव श्री वसंत राव खान खोजे थे। मात्र 40 सदस्यों से स्थापित यह ज्येष्ठ नागरिक संघ 27 सितंबर 1993 को पंजीकृत हुआ, जिसका कि पंजीयन क्रमांक 339 है। आज इस ज्येष्ठ नागरिक संघ के करीब 600 सदस्य हैं और राज्य शासन का भरपूर सहयोग मिलने के कारण हमें 2016 में श्री अमर अग्रवाल जी के सौजन्य से और उनके सहयोग से एक भवन, जिसका कि नाम अनुभव भवन है, वह हमारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए सभी सुविधाओं के साथ दिया गया। इसी भवन में हमारे इस ज्येष्ठ नागरिक संघ की मासिक बैठकें होती हैं। इन मासिक बैठकों में बिलासपुर के रहने वाले हमारे सदस्य एकत्रित होते हैं। इस दिन जिनका जन्म दिवस होता है उनका सम्मान किया जाता है और किसी विषय विशेष पर एक्सपर्ट लोगों को बुला करके उस विषय की जानकारी सम्मानित लोगों को दी जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे सदस्यों के साथ समन्वय, उनके कल्याणार्थ जो कार्य हैं उनकी मदद करने का काम हम लोग करते आ रहे हैं। वर्ष में दो बार उनके मनोस्वस्थ मनोरंजन के लिए पिकनिक का आयोजन, इसके अलावा विभिन्न प्रकार की विधिक सेवाओं में उनकी सहायता करना, यही एक मुख्य उद्देश्य है।
साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना।
चंद्र प्रकाश देवरस अंकल जी कहें या दादाजी, उनसे अभी हम कुछ देर बाद फिर मिलेंगे। पहले बिलासपुर इकाई के वर्तमान उपाध्यक्ष श्रमी श्रीवास्तव जी से मिलते हैं और जानते हैं कि बिलासपुर के इन वरिष्ठ नागरिकों को जोड़कर रखने वाली ये संस्था कैसे कार्य कर रही है।
साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे।
नमस्कार, मैं रमेश श्रीवास्तव 2002 में बिलासपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से रिटायर हुआ था और 2005 से मैंने ज्येष्ठ नागरिक संघ बिलासपुर ज्वाइन किया। ज्येष्ठ नागरिक संघ को अभी 2016 में माननीय अमर अग्रवाल जी ने एक भवन उपलब्ध कराया जो तिलक नगर बृहस्पति बाजार के पास स्थित है। वहाँ हम लोग हर माह के आखिरी सप्ताह मीटिंग होती है। 2012 से मैं इस ज्येष्ठ नागरिक संघ का उपाध्यक्ष भी हूँ। हम लोग वरिष्ठ जनों के हितार्थ, उनके स्वास्थ्य के लिए, वेलफेयर के लिए काम करते हैं। हर एक वृद्ध दंपति जो अलग रहती है उनका रिकॉर्ड बनाया गया है। कम्युनिटी पॉलिसिंग के जरिए हर एक वृद्ध दंपति का एड्रेस पुलिस थाने में और हमारे पास उनके पूरे नंबर रहते हैं, यदि कभी भी ज़रूरत होती है उनको मदद दी जाती है। अभी साइबर क्राइम का जमाना था, लॉकडाउन के पहले बहुत कई लोगों का पैसा फ्रॉड किया गया, तब हम लोगों ने उसके लिए मीटिंग बुलवाई थी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ, एसपी साहब, एडिशनल एसपी, यहाँ के आईजी साहब के साथ सबको, वृद्ध जनों को ट्रेनिंग दी गई है ताकि उनके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन हेतु हर साल एक पावस संध्या का कार्यक्रम होता है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम हम लोग करते हैं और अच्छे बड़े पैमाने पे करते हैं और बहुत इंटरटेनिंग रहता है। इसी तरह हर तीसरे महीने में पिकनिक पे सबको ले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिकनिक में जाते हैं, जेंट्स लेडीज सब। एकाकीपन दूर भी होता है, मनोरंजन भी होता है और उत्साह बढ़ता है। लीगल सर्विस भी देते हैं, कोई भी समस्या हो वरिष्ठ नागरिकों को उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, न्यायालय के से संबंधित मदद करते हैं। उनका स्वास्थ्य शिविर भी सबका हर 3 महीने में किया जाता है। उनकी पेंशन वगैरह के संबंध में भी जो भी असुविधा हो तो उसे सब लोग मिलकर दूर करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी बराबर ध्यान दिया जाता है। अभी कोरोना की जो समस्या आई है, महामारी फैली है, तो उसके लिए भी हम लोग सक्रिय हैं और हमारे ज्येष्ठ नागरिक संघ द्वारा 1,00,000 रुपया का चेक पीएम केयर फंड में दिया गया है। इसी तरह समाज के हर काम में हम लोग आगे रहते हैं।
सीनियर सिटीजन, जिनको हर स्थान पर सुविधा प्रदान करने के लिए संविधान में है ढेर सारे नियम, ढेर सारी धाराएं, ढेर सारे कानून। वरिष्ठ नागरिकों की संख्या देश में कितनी है, आगे क्या आंकड़े होने की उम्मीद है, संविधान में इनके लिए क्या क्या प्रावधान है और इनको क्या उपलब्ध हो रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं एक बार फिर श्री चंद्र प्रकाश देवरस जी।
17 अप्रैल 2019 को भारत सरकार के द्वारा यूएनओ को दी गई जानकारी के अनुसार आज अपने देश में वरिष्ठ जनों की जनसंख्या 13.6 करोड़ है। इन वरिष्ठ जनों में 6% यानी करीब करीब 80 लाख वरिष्ठ जन 80 वर्ष के ऊपर हैं, और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक ये जनसंख्या वरिष्ठ जनों की डबल हो जाएगी, और ये जो आज की स्थिति है कि 35% वरिष्ठ जन और 65% कनिष्ठ जन हैं, यह डबल हो जाएगी, और 2050 में वरिष्ठ जनों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उनकी देखभाल और उनका उनसे कार्य करना ये बड़ा दुष्कर हो जाएगा। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अनेक प्रकार से चिंतन कर कुछ कदम उठाए हैं, और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा संविधान की धारा 41, 21 और 46 के अनुरूप नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्ड पर्सन, नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन्स और मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया है। इसके अतिरिक्त 2016 में नेशनल अथॉरिटी फॉर सिविल फॉर लीगल सर्विसेज टू सीनियर सिटीजन्स यह भी बनाया है, जिसके कि अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इन सब प्रावधानों के साथ वरिष्ठ जनों की एक्चुअल स्थिति क्या है और वरिष्ठ जनों को इसके बारे में कितना ज्ञान है, वे कितने जागरूक हैं, इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए और इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हर एक राज्य में वरिष्ठ जन कल्याण आयोग और वरिष्ठ जनों की संगठनों को बनाया गया है। हमारा संगठन, जिसका कि मुख्यालय मुंबई में नेरुल में है, जिसका नाम है ज्येष्ठ नागरिक भवन, यह अखिल भारतीय वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके करीब करीब 22 लाख सदस्य हैं और 26 राज्यों में राज्य स्तर की इकाइयां हैं। इसका प्रतिवर्ष नवंबर दिसंबर महीने में राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। पिछले अधिवेशन में भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू स्वयं उपस्थित थे और उन्होंने मार्गदर्शन दिया। अब इस अम्ब्रेला के अंतर्गत हर एक राज्य में जो फेडरेशंस हैं, वे जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करते कर उन्हें संगठित कर रहे हैं, जिन्हें कि हम लोग वरिष्ठ नागरिक संघ या ज्येष्ठ नागरिक संघ या वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघ, ऐसे अनेक नामों से पंजीकृत कर और काम कर रहे हैं। इनका मुख्य रूप से यह उद्देश्य है कि वरिष्ठ जनों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करना और उनके इन अधिकारों को, उनकी इन सहूलियतों को सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटर करना।
60 या 65 साल की उम्र का वो पड़ाव जब व्यक्ति अपनी बहुत सी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुका होता है, जिंदगी की हर खुशी से रूबरू हो चुका होता है, शरीर के साथ दिमाग भी थकने सा लगता है, रोगों का जमावड़ा, दवाइयों का सहारा, खान पान पर ढेर सारी बंदिशें, खर्चे वाले शौक धीरे धीरे खत्म से होने का वक्त, सीमित जरूरतों और सीमित चाहतों में गुजारा करने वाली इस उम्र में उनकी जरा सी जरूरतें क्या होती हैं?
वरिष्ठ जन को, जो कि 60 के बाद के उम्र के होते हैं, उन्हें मात्र 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहला, सम्मान। यह सम्मान जो है आर्थिक सम्मान, सामाजिक सम्मान, शासकीय सम्मान, प्रशासकीय सम्मान। दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में उनको ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत, वरिष्ठ जनों को स्वास्थ्य की देखभाल की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसके लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हुए हैं। मोबाइल हॉस्पिटल्स, मोबाइल फिजियोथेरापी सेंटर्स, जेरियाटिक मेडिसिन के वार्ड, वरिष्ठ जनों के लिए अलग वार्ड, वरिष्ठ जनों के लिए अलग डॉक्टर्स, इत्यादि की व्यवस्था, ये प्रावधान हैं, लेकिन सुनिश्चित करना और उसका क्रियान्वयन करना ये राज्य शासन के हाथ में। तो स्वास्थ्य, उसके बाद में सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा। अब सामाजिक सुरक्षा में समाज में उनको उचित स्थान, उनको उचित सम्मान, मिलना चाहिए, यह देखना चाहिए। और इसमें भी जो शासकीय कार्यक्रम होते हैं, प्रशासकीय कार्यक्रम होते हैं, या जो समाज के कार्यक्रम होते हैं, उन्हें उन कार्यक्रमों में तो वरिष्ठ जनों को उचित स्थान और सम्मान दिया गया है या नहीं दिया जा रहा है, इसके प्रति लोगों को जागरूक करना, कनिष्ठ लोगों को, जो यंग लोग हैं उनको जागरूक करना कि भाई ये आपको करना है। चौथा, सुगमता। सुगमता इसलिए कि आप वरिष्ठ जन शारीरिक रूप से तो जरा कमज़ोर हो ही जाते हैं और उनकी वो उनको जाना आना तो पड़ता ही है, तो जब जाना आना बाहर पड़ता है और जब दूसरी जगह जाना, सार्वजनिक स्थलों में जाना है, तो उनके लिए वो सार्वजनिक स्थल सुगम हो जाए। कहीं पर सीढ़ियाँ नहीं हैं तो रैंप बना दिया जाए, कहीं पर सीढ़ियाँ हैं तो एस्केलेटर की ज़रूरत है तो एस्केलेटर बना दिया जाए, इस तरह की सुगमता को सुनिश्चित करना, ये काम हम लोग करते हैं। और ये राष्ट्रीय स्तर के जो फेडरेशंस हैं, ये फेडरेशंस जहाँ जहाँ भी इस तरह की कमियाँ पाई जाती हैं, इन कमियों को केंद्रीय मंत्रियों को बुला करके और उनसे चर्चा करके और उनको इनका क्रियान्वयन कराते हैं।
आपके घर में बुजुर्गों की संख्या कितनी है? 2 या 3 या 4? लेकिन देश भर में, सोचा है कभी आपने, इनमें से पेंशन की सुविधा कितनों को उपलब्ध है? ये सोचा है कभी आपने? सरकारी योजनाओं के तहत बरसों से चली आ रही छोटी सी रकम इस महंगाई के जमाने में क्या हमारे उन बुजुर्गों के लिए पर्याप्त है जिनकी बदौलत आज हम आप इस दुनिया में मौजूद हैं? जरा सुनिए ये आंकड़े।
आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा एक बड़ा भारी पहलू है। हमारे देश में करीब करीब 70% लोग ऐसे हैं जो लोग बिलो पावर्टी लेवल में, और जो पेंशनर हैं वो मात्र 3,85,00,000 के करीब हैं, और टोटल कितने हैं, 13,60,00,000। तो ये जो बाकी के जो 9,10,00,000 लोग हैं, इनको आर्थिक सुरक्षा किस तरह से दी जाए? केंद्र सरकार ने 10 साल पहले इंदिरा गांधी आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 200 रुपया वृद्धावस्था पेंशन प्रत्येक के लिए स्वीकृत की है, और उसका क्रियान्वयन राष्ट्र के राज्य के फेडरेशन के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। अब इसके क्रियान्वयन में असमानता बहुत ज़्यादा है। ये असमानता होने के कारण क्या है कि प्रत्येक राज्य अपनी ओर से वृद्धजनों के लिए कुछ फंड्स डाल करके उन्हें अधिक पैसे देते हैं, अधिक पेंशन दे रहे हैं। कहीं पर ये सिर्फ पेंशन सिर्फ बीपीएल के, बिलो पावर्टी लेवल वाले लोगों के लिए ही है, और कहीं पर एपीएल बीपीएल का कोई मसौदा नहीं है। जिस व्यक्ति के पास में उपार्जन करने का कोई दूसरा सोर्स नहीं है, उनको ये आर्थिक सहायता अवश्य मिलनी चाहिए। वो पेंशनर ना हो, वो इनकम टैक्स पे ही ना हो, तो इनकम टैक्स पे ही ना हो, पेंशनर ना हो, तो उन्हें ये सहायता मिलनी चाहिए। अब इसे देखिए, ये सहायता भी यूनिफॉर्म नहीं है पूरे देश। छत्तीसगढ़ में मात्र 350 रुपये मिलता है प्रतिमाह, और वो भी वृद्धावस्था पेंशन बीपीएल वालों को मिलती है, और जो बीपीएल में नहीं है उनको कुछ भी नहीं मिलता। आंध्र प्रदेश में एपीएल और बीपीएल का कोई रिवाज नहीं है, वहाँ प्रत्येक वृद्ध जन को जो कि 60 वर्ष के ऊपर है उसे 3,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है, जो थोड़ा दिव्यांग है उसे 5,000, जो पूर्णतया दिव्यांग है उसे 10,000 रुपया प्रतिमाह उसके खाते में जमा कर दिया जाता है। तेलंगाना में 2,500 है, केरला में 2,000 है, कर्नाटका में 2,800 है, महाराष्ट्र में 1,800 है, इस तरह से गोवा में 2,500 है। इस तरह से प्रत्येक राज्य में अलग अलग ढंग से ये आर्थिक सहायता वृद्धजनों को उनके डे टू डे वर्क के लिए, उनके रहन सहन के लिए, मेंटेनेंस के लिए दी जाती है। तो इसमें समानता होनी चाहिए और ये यूनिफॉर्म पूरे देश में होनी चाहिए, इसके लिए एक ही फार्मूला होना चाहिए, और ये उन सभी लोगों को मिलनी चाहिए जिनका के और दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने यूनिफॉर्म पेंशन, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की मांग की है। और ये यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की मांग पिछले 5 वर्षों से लंबित है। कभी पार्लियामेंट में जाती है, लोकसभा में जाती है, कभी आती है, कभी उसके ऊपर में नाम बदलते हैं, उसके ऊपर में फिर विचार बनता है, फिर कमिटी बनती है।
विचित्र स्थिति है ना, जिन बुजुर्गों को जिंदगी भर काम करने के बाद आराम से जिंदगी व्यतीत करने के लिए हर मामले से रिटायर करने की बात की जाती है, उन्हें अपने जीने के अधिकारों के लिए भी इस उम्र में खुद रास्ते ढूंढने पड़ते हैं।
और अंत में तंग हो करके हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में हमने एक PIL दाखिल की। इस PIL के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2019 को ये निर्णय दिया है, रिजल्ट दिया है कि भारत सरकार इन 4 मुद्दों के ऊपर में कार्य सुनिश्चित करे। वो क्या है? पहला, रियलिस्टिक पेंशन। दूसरा है रियलिस्टिक शेल्टर। तीसरा है रियलिस्टिक हेल्थ सर्विसेज। और चौथा है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट 2007। इन 4 के ऊपर में पिछले कई महीनों से मंथन सरकार का चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड यानी कोई अच्छी बात अभी तक बाहर नहीं आई है। इसके ऊपर में हम लोग लड़ रहे हैं। अभी फिर से अवमानना का हमने ये किया हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हमने किया हुआ है, ताकि हमको हमारे देश में जितने 9 करोड़ लोग हैं, 9 करोड़ जो नॉन पेंशन होल्डर्स हैं, इनको एक समान यूनिवर्सल पेंशन मिले, यही एक मुख्य मुद्दा है। जब तक जीवन है, जब तक जान है, सचमुच आर्थिक मुद्दा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी मुद्दे से सारे मुद्दे जुड़े होते हैं। लेकिन पूरी जिंदगी घर परिवार, गृहस्थी, शौक, बच्चे, जिम्मेदारियां निभाने के बाद इन बुजुर्गों को क्या सुकून के पल नसीब नहीं होने चाहिए? राज्य केंद्र सरकार के साथ UNO के द्वारा बुजुर्गों के लिए क्या नॉर्म्स हैं, लीगल नॉर्म्स क्या हैं, अन्य क्षेत्रों में भी कुछ और अनकही अनजानी सी बातें, आइए सुने इन्हीं की जुबानी। इसके अलावा हम लोग जो बात करते हैं कि UNO के जो नॉर्म्स हैं, इन UNO के नॉर्म्स के मुताबिक हर एक 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर में एक वृद्धाश्रम होना चाहिए। इस वृद्धाश्रम में जो सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं भी अच्छी तरीके की होनी चाहिए और उसके ऊपर में कोई मार्गदर्शक भी होना चाहिए। कुछ हद तक कार्यक्रम में काम हो रहा है। इन कार्यों में मैं स्वयं ही जिला के अपीलेंट अथॉरिटी का सदस्य हूं, मैं स्वयं ही जिला के वृद्ध वरिष्ठ जन के जो नोडल ऑफिसर हैं उस कमिटी का भी मेम्बर हूँ। और इस तरह से हम जागरूकता फैलाते जा रहे हैं, जागरूक करते जा रहे हैं। आजकल ये नालसा ने, नेशनल अथॉरिटी फॉर सीनियर सिटीजन लीगल सर्विसेज टू सीनियर सिटीजन ने पैरा लीगल वॉलेंटियर्स की योजना शुरू की है। ये पैरा लीगल वॉलेंटियर्स गांव-गांव में जाते हैं, वरिष्ठ जनों की प्रॉब्लम्स को अगर वो लोग आगे बढ़ करके उसमें लीगल एक्शन नहीं ले पाते हैं तो उन्हें बाहर लाते हैं और उनकी मदद करते हैं फ्री। उनमें कोई निशुल्क मदद उनको लीगल सर्विसेज वाला देता है और उनके जो समस्याएं हैं उनको विधिक रूप से दूर किया जाता है। इस तरह के कार्यक्रम अवश्य चल रहे हैं, लेकिन अभी इसमें बहुत ही काम होना है और उस काम के लिए समाज भी जिम्मेदार हैं, वरिष्ठ जन भी जिम्मेदार हैं और सरकार तो जिम्मेदार है ही। हम इन्हीं चीज़ों को लेकर के लोगों को हम जागरूक करते हैं।
जब हम न होंगे, जब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते कशकों से भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते
केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी, राज्य सरकार ने पिछली घोषणाओं पर अमल कर दिया, लेकिन एक ही देश के अलग अलग राज्यों में बुजुर्गों के प्रति व्यवहार नियमों में इतना फर्क क्यों? इन आंकड़ों को सुनकर जरा चिंतन आप भी जरूर कीजिएगा।
वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु सबसे ज्यादा काम भारतवर्ष के केरला राज्य में हुआ है। केरल के प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों का संगठन है जो कि वहाँ के राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत है, पंजीकृत है और रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ प्रत्येक नागरिक को बीपीएल और एपीएल के बिना ही समान रूप से पेंशन दी जाती है। इसके अलावा उनके कार्यक्रमों के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक मदद भी की जाती है। इसी तरह महाराष्ट्र देश का ऐसा सबसे बड़ा राज्य है और इस महाराष्ट्र राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के करीब 4,500 संगठन हैं। इस राज्य में तालुका यानी तहसील स्तर पर भी वरिष्ठ नागरिकों के संगठन कार्यरत हैं जो कि वहाँ की जनता को, वहाँ के वरिष्ठ नागरिकों को जागरूक करते हैं और उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं। पंचायत स्तर पर भी पंचायत की जो होने वाली आमदनी है उस आमदनी का 2% भाग वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए वहाँ रखा जाता है। इस तरह से महाराष्ट्र में भी यह आंदोलन सबसे ज़्यादा गति पकड़ा हुआ है और इसी की तर्ज पर मैं चाहता हूँ कि देश में हर राज्य में यह आंदोलन चले और वरिष्ठ जनों को उनका अधिकार मिले। इसी तारतम्य में मैं कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य भी सोच तो रहा है कि इस दिशा में कार्य करें, लेकिन अभी किसी भी प्रकार की पॉलिसी या नीति अभी नहीं है, हमें के कारण से इस दिशा में कार्य अभी कमज़ोर है। फिर भी समाज कल्याण विभाग के द्वारा समय समय पर मदद की जाती है। उदाहरण के लिए 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ जन दिवस मनाने के लिए सरकार के द्वारा ही कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें कि वहाँ के ही ज्येष्ठ नागरिकगण पूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। मेरा निवेदन है छत्तीसगढ़ सरकार से कि वे शीघ्रातिशीघ्र वरिष्ठ जनों के लिए नीति और खास करके उनके आर्थिक सहायता के दृष्टिकोण से कुछ कार्य करके और उनको भी अन्य राज्यों के तुलना में बराबर लाएं और उन्हें भी उसी तरह की पेंशन दी जाए। तो चिंतन किया आपने? क्या ये बुजुर्गों की वाजिब मांग नहीं है? क्या इसके बारे में सोचने की जिम्मेदारी हम तब महसूस करेंगे जब हम खुद इस स्थिति में पहुंचेंगे? अंत में कुछ जानकारियां, कुछ सुझाव, कुछ उम्मीदें हमारे ज्येष्ठ नागरिक संघ की।
बिलासपुर में हम लोग हमेशा शहर के व्यक्तियों से अलग अलग मुलाकात करते रहते हैं और उनको प्रेरित करते हैं कि वो ज्येष्ठ नागरिक संघ ज्वाइन करें। वर्तमान में करीब 600 सदस्य हमारे ज्येष्ठ नागरिक संघ के हैं और नियमित रूप से उसमें उनकी भेंट होती रहती है। उनके कल्याण के लिए हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन अन्य लोग भी इसमें मदद हम लोग चाहते हैं, जिसमें CSR के जरिए मोबाइल हॉस्पिटल और फिजियोथेरेपी सेंटर बनवाने की योजना है। हमारे विधायक जी ने बीच में 5 लाख रुपया भी पहले मंजूर किया था और फिर 5 लाख और मंजूर किया है, जिससे बृहस्पति बाजार में स्थित अनुभव भवन में हम उसमें फिजियोथेरेपी की सब सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रयास जारी है इसके संबंध में। अभी इस महामारी के दौर में भी हमने लोगों से संपर्क करके मोबाइल से उन लोगों से ध्यान रखा है और जब भी जरूरत हो उनकी मदद की है हमारे वरिष्ठ नागरिकों की। यहाँ एक ही ज्येष्ठ नागरिक संघ पूरे शहर में है और उसमें 600 सदस्य है हमारे।
दिए की तरह टिमटिमाते रहते हैं, हर कदम पे हमें दे हिम्मत, हमारा हौसला बढ़ाते हमारे बुजुर्ग। अब ये एहतराम होता है कि कोई हमारा साथी रहनुमा भी नहीं, खुशियों की जिंदगी में तब फलसफे बन जाते हैं हमारे बुजुर्ग। ज्येष्ठ नागरिक संघ बिलासपुर के सदस्यों से बातचीत के आधार पर ये ऑडियो फीचर वट वृक्ष अभी आपने सुना। वरिष्ठ नागरिक संघ के सदस्य श्री चंद्र प्रकाश देवरस और श्री रमेश श्रीवास्तव हमारे साथ थे। इस कार्यक्रम का संयोजन किया था रितेश शर्मा ने, प्रस्तुति और संपादन था संज्ञा टंडन का। ये प्रस्तुति आपने अर्पण रेडियो के माध्यम से सुनी।
आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रेडियो अर्पण।